नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी की नई व्यवस्था से नागरिकों के उपभोग में सुधार होगा और इससे पूंजीगत व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में सुश्री सीतारामन ने कहा कि 99% वस्तुओं और सेवाओं पर अब या तो शून्य या 5 से 18% तक का जीएसटी लगेगा। उन्होंने कहा कि पहली बार केंद्र सरकार ने जीएसटी पर क्षतिपूर्ति मुआवजा और समग्र प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और अल्कोहल उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे।
We've resolved classification related issues and we've ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing and refunds.
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार उन निर्यातकों की मदद का प्रयास कर रही है जिन पर 50% अमरीकी आयात शुल्क का प्रभाव पड़ा है।
We will come out with something to handhold those who are hit by the 50% tariff from the US. There is a package which consists of very many different ways in which we want to help them. So we'll wait for the cabinet to clear it so that this tirade of the tariff is something which they can face.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को साहसी बताया है। उन्होंने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कहा कि साधारण के हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सरकार बंदरगाह क्षमता, नौवहन, जहाज निर्माण और अंतरदेशीय जलमार्गों को बेहतर बनाने के लिए 80 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 2047 तक समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तमिलनाडु के तूतीकोरन में मीडिया से बातचीत में श्री सोनोवाल ने कहा कि सागरमाला कार्यक्रम नए मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों के माध्यम से तटीय समुदायों की आजीविका में सुधार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समुद्री नवाचार और कनेक्टिविटी भारत की विकास गाथा में तमिलनाडु की भूमिका को बदल रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इस साल मार्च में हुए अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले के एक प्रमुख वांछित आतंकवादी शरणजीत कुमार को कल बिहार के गया से गिरफ्तार किया है। वो गुरदासपुर जिले के बटाला गांव का रहने वाला है। NIA सूत्रों के अनुसार शरणजीत 2 बाइक सवार हमलावरों द्वारा अंजाम दिए गए इस आतंकवादी हमले की साजिश और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री को पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए पंजाब का दौरा किया और कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब रेड क्रॉस सोसायटी की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री के 9 ट्रकों को झंडी दिखाकर रवाना किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100 टन पशु चारा भी भेजा गया है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से राज्य के 29 जिलों के 191 तालुका में भारी नुकसान हुआ है। राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भराने ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान के आकलन का काम चल रहा है और जल्द ही किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। थाईलैंड की संसद ने उद्योगपति अनुतिन चार्नविराकुल को देश का प्रधानमंत्री चुना है। वे पिछले 2 वर्षों में चुने गए तीसरे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पेंतोगतान श्रीनावात्रा का स्थान लिया है जिन्हें पिछले सप्ताह संवैधानिक न्यायालय ने कंबोडिया के साथ सीमा विवाद से निपटने में नैतिक उल्लंघन के आरोप में पद से हटा दिया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में तैनात पश्चिमी देशों की सेना रूस के हमले का निशाना बनेगी। फ्रांस और ब्रिटेन ने संकेत दिया है कि वे युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन में सेना तैनात करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वॉशिंगटन वायुसेना तैनात कर सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।